ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज स्मार्ट दिल्ली आइडियाथॉन 2025 का शुभारंभ किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवासन में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है और राजधानी दिल्ली में क्रिसमस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग में वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श में भाग लिया। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय बजट वर्ष 2025-26 के लिए बजट पूर्व परामर्श की शुरुआत इस महीने की 6 तारीख को हुई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों, किसान संघों, अर्थशास्त्रियों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ परामर्श किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री आगामी 1 फरवरी को लोकसभा में वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर सकती हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज स्मार्ट दिल्ली आइडियाथॉन 2025 का शुभारंभ किया। ये आइडियाथॉन गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से शुरू किया है। इसमें दिल्ली के विभिन्न विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थानों और कॉलेजों के छात्रों द्वारा दिल्ली की समस्याओं के समाधान के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। आइडियाथॉन राजधानी में वर्तमान और भविष्य से जुड़ी शहरी चुनौतियों को सीधे संबोधित करता है, जिसमें यातायात, महिलाओं की सुरक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण आदि शामिल है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने संवाद की श्रृंखला में आज सांसद बांसुरी स्वराज के साथ 600 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों से बातचीत की। श्री सक्सेना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि सुरक्षा, मनोरंजन, सड़क सुरक्षा और चिकित्सा आपात स्थितियों से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए दिल्ली पुलिस, DDA, PWD और MCD को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को ये आश्वासन दिया है कि उनकी शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को वरिष्ठ नागरिकों के लिए चल रही योजनाओं के अलावा साप्ताहिक बातचीत करने का निर्देश भी दिया गया है। दिल्ली पुलिस को संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज दिल्ली में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के राजेंद्र नगर इलाके में आज से 24 घंटे साफ पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि राजधानी में सरकार शहरवासियों को 24 घंटे अमोनिया मुक्त साफ पानी उपलब्ध कराएगी। श्री केजरीवाल ने आगे बताया कि संयंत्र लगाकर अमोनिया को हटाने का कार्य किया जाएगा।
दिल्ली को 24 घंटे पानी देने के लिए लगभग 1250 MGD पानी चाहिए। हमने प्लान बनाया है 1400 MGD पानी हम बनाएंगे। 2500 ट्यूबवेल बना के हम 200 MGD पानी और एक्स्ट्रा ट्रांस यमुना से लेके आएंगे। ट्यूबवेल से पानी निकालेंगे, पानी का पहले डीअमोनाइजेशन प्लांट में अमोनिया साफ करेंगे, फिर उसकी हार्डनेस साफ करेंगे RO से और उस पानी को आपके UGR में ले जाके आपके घर तक पहुंचाएंगे।
वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी द्वारा इस घोषणा को चुनावी जुमला बताया है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि श्री केजरीवाल ने पिछले चुनावों में भी ये वादा किया था, लेकिन उन्होंने अब तक लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।
एक सार्वजनिक मीडिया के मंच से स्वयं केजरीवाल जी ने अपना फेलियर एडमिट करते हुए कहा था कि दिल्ली को वो साफ पानी नहीं दे पाए हैं। चुनाव से पहले उनको एक घर और एक नल, ये याद आ गया है, कुछ नहीं है। इट इज अ पॉलिटिकल थियेट्रिकल मूव।
दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवासन में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने कहा कि इस मामले में शामिल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 5 बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि आरोपियों ने फर्जी वेबसाइट के माध्यम से नकली दस्तावेज तैयार किए, जिससे बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से देश में रह सकें।
साउथ डिस्ट्रिक्ट ने जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाई थी, उसमें चार सस्पेक्ट लोग हमारे एक मर्डर केस में वांटेड थे, उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई तो मालूम चला ये लोग बांग्लादेश से आए थे। साथ ही साथ इसमें टोटल फिर अरेस्ट हुए थे, टोटल साउथ दिल्ली ने लगभग 5 बांग्लादेशी, जिसमें 2 मेल 3 फीमेल और 6 अन्य लोग हैं जिन्होंने उनकी मदद करी थी।
दिल्ली पुलिस ने फर्जी वीजा रैकेट, फर्जी वीजा स्टिकर और निवास कार्ड बनाने वाले एक गिरोह का भी पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरोह विभिन्न देशों के लिए फर्जी वीजा स्टिकर और अस्थायी निवास कार्ड तैयार करने में शामिल था। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से 25 पासपोर्ट, 50 फर्जी वीजा स्टिकर, 5 अस्थायी निवास कार्ड, 14 रबर स्टैंप, 4 मोबाइल फोन और 2 पेन ड्राइव जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि इन फर्जी दस्तावेजों को तैयार करने में प्रयुक्त उपकरण, जिनमें यूवी लाइट मशीनें, खाली स्टिकर पेपर, रबर स्टैंप और मोहरें शामिल हैं, उन्हें भी जब्त कर लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को गुमराह करने वाले डार्क पैटर्न की पहचान करने और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई पहलों का वर्चुअल शुभारंभ किया। श्री जोशी ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न की पहचान करने और उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। जागो ग्राहक जागो ऐप का उद्देश्य उपभोक्ताओं की ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान सभी यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक्स यूआरएल को लेकर आवश्यक ई कॉमर्स सूचना प्रदान करना है। ये ऐप किसी यूआरएल लिंक के असुरक्षित होने पर इसके इस्तेमाल में सावधानी बरते जाने की स्थिति में ग्राहकों को सचेत करेगा। अपने संदेश में श्री जोशी ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें सशक्त बनाने के प्रति वचनबद्ध है। श्री जोशी ने नैतिक कार्यप्रणाली और सशक्त उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने के प्रति सभी हितधारकों, कारोबारी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, नागरिक समाज और नियामक प्राधिकरण को प्रेरित किया। श्री जोशी ने कहा कि एक सशक्त उपभोक्ता ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव रख सकता है।
We reaffirm our commitment to protecting and empowering the rights of the consumers. This year's theme, Virtual Hearing and Digital Access to the Consumer Justice, highlights the importance of the emerging opportunities in the digital world. Government of India dedicated providing safe, transparent and trustworthy marketplace and monitoring the unfair trade practices in the digital domain.
इस अवसर पर उपभोक्ता कार्य राज्य मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में उपभोक्ताओं की भूमिका का भी उल्लेख किया।
उपभोक्ताओं का हित कैसे संरक्षित और कैसे उनके हितों की रक्षा की जाए, हमारे मंत्रालय के साथ साथ मंत्रालय से जुड़े हुए और उपभोक्ताओं से जुड़े हुए ऐसे प्लेटफॉर्म है, कंज्यूमर कमीशन है। आज उपभोक्ता में जागृति कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए इतने सारे पोर्टल्स का आज उद्घाटन भी करने का काम किया है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस देश में उपभोक्ता गतिविधियों के महत्व को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत विरोधी संगठनों और नेटवर्क का पता लगाने के लिए मित्र देशों के साथ खुफिया समन्वय रणनीति विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में 37वें इंटेलिजेंस ब्यूरो शताब्दी समारोह में श्री शाह ने कहा कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले, साइबर हमले, सूचना युद्ध और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने जैसी चुनौतियों का समाधान ढूंढने की जरूरत है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की प्रशंसा करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि इसकी कार्यपद्धति, सतर्कता, सजगता और त्याग तथा समर्पण की परंपरा के कारण ही आज देश सुरक्षित है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले 5 वर्षों में निर्णायक लड़ाई लड़कर देश के लिए विभिन्न खतरों से निपटने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग बढ़ाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि 2047 तक पूर्ण विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को सभी संभावित खतरों की कल्पना करनी चाहिए और देश की सुरक्षा के लिए व्यापक रोडमैप तैयार करना चाहिए। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 10,000 से अधिक नवनिर्मित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन के दौरान पंजीकरण प्रमाण पत्र, रूपे किसान क्रेडिट कार्ड और माइक्रो एटीएम नवगठित सहकारी समितियों को वितरित भी करेंगे। ये वित्तीय साधन पंचायतों में क्रेडिट सेवाओं की सरल उपलब्धता प्रदान करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी रामासुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रियांक कानूनगो और डॉ विद्युत रंजन सारंगी को आयोग का सदस्य बनाया गया है। न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 29 जून 2023 को सेवानिवृत्त हुए थे। ये नियुक्ति पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा के इस वर्ष 1 जून को आयोग के अध्यक्ष के पद के रूप में कार्यकाल समाप्त होने के बाद हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने ग्रेटर कैलाश विधानसभा के शाहपुर जट गांव में 2 दिवसीय शाहपुर जट फेस्टिवल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पर्यटन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम आज और कल दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जारी रहेगा। कार्यक्रम में गांव की सभ्यता से जुड़ी लोकप्रिय रागनियां, हरियाणवी फोक डांस, हास्य कवि सम्मेलन, मैजिक शो, स्टैंड अप कॉमेडी और कठपुतली नाटक का आयोजन किया गया है। प्रतिष्ठित फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल का अंतिम संस्कार आज दोपहर दादर के शिवाजी पार्क श्मशान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। 90 वर्षीय फिल्मकार श्री बेनेगल ने कल शाम मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें किडनी की गंभीर बीमारी को लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक रिपोर्ट।
श्याम बेनेगल के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनकी पत्नी नीरा और पुत्री प्रिया तथा कई पीढ़ियों के कलाकार शमशान में एकत्रित हुए। श्री बेनेगल के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले कलाकारों में नसीरुद्दीन शाह, गुलजार, जावेद अख्तर, ईला अरुण, शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर, दिव्या दत्ता, श्रेयस तलपड़े, बमन ईरानी, कुणाल कपूर और अनंग देसाई सहित कई प्रतिष्ठित कलाकार उपस्थित थे। भारत में समानांतर सिनेमा के अग्रणी निदेशक श्याम बेनेगल अंकुर, मंडी, निशांत और जुनून जैसी कालजयी क्लासिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। कई फिल्मों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित होने के अलावा श्री बेनेगल को 1976 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अनुभवी फिल्मकार श्री बेनेगल को 2005 में सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
श्याम बेनेगल के निधन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। क्रिसमस को लेकर राजधानी दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं। इस अवसर पर राजधानी के गोल डाक खाना स्थित कैथेड्रल ऑफ द सेक्रेड हार्ट सहित विभिन्न गिरजाघरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। एक रिपोर्ट।
कैथेड्रल ऑफ द सेक्रेड हार्ट गिरजाघर में प्रभु ईसा मसीह के जन्म के साथ मध्यरात्रि में सामूहिक प्रार्थना की जाएगी। आज रात 12 बजे एक बड़ा जुलूस निकलेगा जिसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं कल इस चर्च में श्रद्धालुओं के बीच केक बांटा जाएगा। इसके अलावा यहां पर सांता क्लॉज भी मौजूद रहेगा। उधर दिल्ली यातायात पुलिस ने विभिन्न गिरजाघरों में होने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात के विशेष प्रबंध किए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
वायु गुणवत्ता में सुधार के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ग्रेव 4 को निरस्त कर दिया है। वहीं अब ग्रेव 1 से 3 के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। इस बीच हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। शाम 7 बजे तक दिल्ली एनसीआर में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 358 था। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की बूंदाबांदी हुई जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज स्मार्ट दिल्ली आइडियाथॉन 2025 का शुभारंभ किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने जागो ग्राहक, जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवासन में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया और राजधानी दिल्ली में क्रिसमस को की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।